स्टूडियो लॉजिक बॉक्स ओरिजिनल्स। किस्सा कहानी में मैं निधि बासु आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ दिल छूने वाली कहानियाँ। आज के एपिसोड में सुनिए डॉक्टर अचला नागरजी द्वारा लिखी कहानी अर्धनारीश्वर का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन है निधि बासु का। ऑटो आगे बढ़ गया था, लेकिन सिलेटी के टूटे दांत वाली हंसी ने हमें काफी देर तक पकड़े रखा।
घर से हमारा ऑफिस पास ही है, यानी बस से जाओ तो चौथा स्टॉप। हाँ, पत्नी को मलाड से चर्चगेट तक की दूरी लोकल ट्रेन से रोजाना ही नापनी पड़ती है, आदत पड़ गई है उसे। लेकिन मुंबई में रहते डेढ़ दशक से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद लोकल के नाम से हमें दहशत होती है। छुट्टी के दिन कभी हिम्मत जुटा ली वो जुदा बात है, लेकिन अब तो छुट्टी वुट्टी कुछ हो ट्रेनें ठसा ठस भरी ही मिलेंगी। बीवी कहती है यही तो दो चार दिन मिल जाते हैं जब लोगों से मिलना जुलना या शॉपिंग की जा सकती है। यूं भी श्रीमती जी को भीड़ भाड़ का कोई टेंशन नहीं। हंसते हंसते कहती है, काहे का टेंशन, भीड़ के रेले के धक्के के साथ चढ़ जाओ, उसी के साथ उतर जाओ। और तो और रोजाना किसी नई कहानी का उत्साह भी संग लिए चली आती है। कहती है कहानी न भी सही, जाते जाते मजे मजे अंताक्षरी खेलते वक्त गुजर जाता है। लड़की हो या किसी भी उम्र की स्त्री, तान लपेटे मारने में कोई पीछे नहीं रहती। रोजमर्रा काम आने वाली चीजें बेचने वाले भी साथ साथ चलते हैं। कंघी, हेयर बैंड, रुमाल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिंदी, गजरे, स्नैक्स। और तो और अब तो लौटती गाड़ियों में भाजी वालियां भी डले लेकर चढ़ जाती हैं। महिला यात्री सोचती हैं, चलो ये किटकिट भी यहीं खत्म। खरीद फरोख्त के साथ साथ अक्सर गाने बजाने से भी मनोरंजन हो जाता है। गाकर या गिड़गिड़ाकर मकसद भीख मांगना ही होता है। कोई कोई तो इतना सुरीला गाता है कि अन्नू कपूर के अंताक्षरी कार्यक्रम तक पहुंच जाने की स्थिति में न सही पहला इनाम, दूसरे या तीसरे नंबर का विजेता बनकर ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर्स पाकर चंद रोज की बादशाहत तो हासिल कर ही सकता है। ये सारी बातें करते हुए मेरी पत्नी के उत्साह से भरे चेहरे पर अगर कभी झुंझलाहट की लकीरें खिंचती हैं तो सिर्फ सिलेटी कॉम की चर्चा करते हुए। कहती है फौज की फौज हाथ पसारे घुस पड़ती है और तालियों के लय पर मांगना शुरू। अगर कम दो तो दो चार बातें सुनाए बिना आगे ना बढ़े, बिल्कुल ही ना दो तो भगवान जाने कौन सी हरकत कर बैठे। सो मारे डर के ज्यादातर तो दे ही देती है। हमारे बचपन वाला किस्सा भी वो सुन ही चुकी है। सिलेटी का तो नाम सुनते ही उनकी नाक चढ़ जाती है। छी, सब जगह वही, सब। जरा बीच पर जाकर देखो। अरे बीच ही क्या, देर रात तो कोई भी अंधेरी सड़क, एकांत कोना, छी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हमारा ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं, सो शाम को हम पत्नी से काफी पहले पहुंच जाते हैं। बच्चे भगवान की दया से बड़े हो चुके हैं, उनके पास अपनी अपनी चाबियां हैं, आते हैं और अपने मनमाफिक नाश्ता पानी भी कर लेते हैं। बल्कि पिछले दो सालों से तो गुड़िया हमें भी चाय बनाकर पिला देती है। पत्नी को घर पहुंचते पहुंचते 7:45 तो हो ही जाते हैं। लेकिन एक रोज 7:45 बज गए, लेकिन सुमन का, ओ क्षमा करें, बताना भूल गया, पत्नी का एक नाम भी है सुमन, उसका कोई पता नहीं। सुइयों के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारी और बच्चों की चिंता भी बढ़ने लगी। ये जानते हुए कि ऑफिस में फोन उठाने वाला अब कोई नहीं होगा, बदहवासी में न जाने कितनी बार फोन घुमा डाला। हाँ, ये तब की कहानी है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। 9:30 और मन में आशंकाओं का घना जंगल यकायक उगाया। बंटी बोला, पापा मैं जाकर पता करता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर घर पे रुकने के लिए राजी किया और खुद कपड़े बदल कर बाहर निकल पड़े। अभी ऑटो रिक्शा रोकने के लिए बार बार हाथ खड़ा कर ही रहे थे कि एक रिक्शा सामने ही रुका और उसमें से सुमन उतरी, वो भी हाथ पांव से सलामत। सिर का बोझ जैसे एक बारगी ही उतर गया। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई?
घर चलो, सब बताती हूँ। ओह, बड़ी गर्मी लग रही है, एक बार नहाकर ठंडी हो लूं, फिर कुछ सूझ पड़े।
पल्लू से पसीना पोंछती वो घर की तरफ बढ़ रही थी और पीछे पीछे चलते हम सोच रहे थे कि ये रिश्ते भी क्या चीज होते हैं। पिछले 2 घंटों से सुमन को खो देने से लेकर घर के अनाथ हो जाने तक की कल्पना ने जैसे सारा खून निचोड़ लिया था। अब नजर भर देख लिया तो सब ठीक हो गया। वो बिल्डिंग में दाखिल होने को ही थी कि हमने उसे पुकारा, तब पलटी।
सुनो, अब खाने पीने का बवाल मत पालना, हम कुछ पैक कराए लाते हैं।
क्यों, सब्जी ही तो छौंकनी है, आटा फ्रिज में रखा है, आओ ना साथ साथ चाय पियेंगे।
सुमन आंखों से ओझल हो चुकी थी और अपनत्व की डोर से बंधे पीछे पीछे चलते हम यही सोचे जा रहे थे, न जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं ये औरतें भी। खाने के साथ साथ सुमन ने अपनी बात की पोटली खोली।
गाड़ी में रोज जैसा रश। अरे वही बेचने वाले, भीख मांगने वाले, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा भी रूटीन वाला।
मुंबई सेंट्रल पर एक नया रेला बाढ़ के पानी की तरह अंदर आ गया और गाड़ी के आगे बढ़ते ही एक चीख उभरी।
अय्या, ओ देवा, आई!
सभी का ध्यान दर्द से छटपटाती भीतर की तरफ बैठी एक युवती पर गया। बाजू वाली औरत घबरा कर बोली,
बच्चा होने वाला है, पानी छूट गया है।
सभी के होश उड़ गए। फास्ट ट्रेन थी, अब तो दादर पर ही रुकेगी। देखते देखते तड़पती हुई महिला नीचे आ पड़ी। हम सबके कलेजे मुंह को आ रहे थे और तभी थालियां बजाता वो आ गया। तुम्हारा एक सिलेटी। मुझे गुस्सा आ गया, जोर से चिल्लाई,
औरत की जान जा रही है और तुम्हें भीख की पड़ी है।
मेरी आवाज को किसी और महिला की आवाज ने दबा दिया।
अभी क्या करने का है रे बाबा, लगता बच्चे का सिर आ गया है।
कोई बोली, ये तो मर जाएगी भगवान। अब तो हिजड़ा जोर से चिल्लाया,
काय को मरेगी, बच्चा जन्ने में क्या तू मर गई थी, कुछ नहीं होगा, पर्दा करो पर्दा। अरे मुंह क्या देखती निगोड़ी, चल मैं इच साड़ी खोलती।
देखते ही देखते उसने अपनी धोती खोली और 2 औरतों ने चादर सी तान ली। दादर आने से पहले ही लेडीज कंपार्टमेंट नवजात शिशु के रोने की आवाज से भर गया। सबके चेहरों पर जरा सा चैन तो झलका, पर अब ये जच्चा बच्चा। धीमी होते होते जैसे ही गाड़ी दादर पर रुकी, मच्छी वाली के खाली डले में फुर्ती से माँ बच्चे को डाल, पर्दे वाली धोती से ढक, 4 हाथों के सहारे वो डब्बे के दरवाजे तक ले आया। इससे पहले कि चढ़ने उतरने की धक्कम धक्का हो, तालियां बजाते हुए वो कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करने लगा कि महिलाएं पीछे सरक लीं। इसी बीच वो जच्चा बच्चा वाला डला प्लेटफॉर्म पर उतारा जा चुका था। मेरी और एक अन्य स्त्री की मदद से डला टैक्सी तक और टैक्सी अस्पताल तक पहुंची। इस पूरे वक्त वो हमारे साथ रहा। इस बीच लड़की के घर वाले भी आ चुके थे और जब सब राजी खुशी निपट गया तब वो तालियां बजाकर नाचने लगा।
अरे अम्मा, तेरा पोता सलामत रहे, अपने पीछे 4 और भाई बहन लाए।
बच्चे की दादी ने जो सारी कथा सुन चुकी थी, रोते हुए उसे गले लगाया
और गले से सोने की चेन उतार उसकी मुट्ठी में दबा दी। सुमन की बातें और खाना दोनों समाप्त हो चुके थे। करीब 12 बज रहे थे। सुमन को सोया जान हम इस दास्तान की परतें उधेड़ने में लगे थे। तभी सुमन पलटी, एक हाथ से टेबल लैंप ऑन किया, देखा आंखों में नींद नहीं आंसू हैं। सुनो जी, मुझे तो आज ऐसा लगा जैसे कभी कभी माँ बाप ना बन सकने वाला वो आज माँ बाप से भी बड़ा बन गया, ईश्वर बन गया।
निश्वास से छोड़ते हमारे जी ने कहा, ईश्वर नहीं अर्धनारीश्वर कहो, यही तो उनका सच है।
आप सुन रहे थे डॉक्टर अचला नागाजी द्वारा लिखी कहानी अर्धनारीश्वर का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन था निधि बासु का।